पूर्व पाठ में लास्ट में हमने कहा था कि मीमांसक और बौद्ध का जो लक्षण है प्रमाण का, उसके बारे में अगले पाठ में हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने लक्षण किया है प्रमाण का कि अनधिगत अर्थ गंत्री प्रमाणम। इसमें ये समझना है हमें, अनधिगत, अधिगत कहते हैं ज्ञात को और अनधिगत कहते हैं अज्ञात को। तो अनधिगत अर्थ माने अज्ञात अर्थ, उसका जो गंत्री है माने उसका जो ग्रहण करने वाला है उसी का नाम है प्रमाण। अनधिगत अर्थ गंत्री प्रमाणम, अज्ञात अर्थ को ग्रहण करने वाला, ग्रहण कराने वाला प्रमाणम प्रमाण कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है विशेष बात कि इसका इन लोगों का मानना है मीमांसकों और बौद्धों का कि ये प्रमाण होने के लिए जो है ना, जो विषय होगा ना उसमें नवीनता होनी चाहिए। प्रमाण तभी कहलाएगा और प्रमाण तभी कहलाएगा जबकि प्रमाण और प्रमाण का विषय नवीन हो। नवीन क्या होता है, जो अज्ञात होता है पहले से, पूर्व जो अज्ञात होता है पहले से, जो जिसको हम नहीं जानते हैं उसको अगर हम जान लिए तो उसको है नवीन ज्ञान कहलाता है, कहलाएगा। तो इस तरह से मीमांसकों और बौद्धों का मानना है कि प्रमा वही होगी जो बिल्कुल अज्ञात पूर्व होगी, माने जिसका पहले से ज्ञान नहीं होगा और अभी ज्ञान होगा वह प्रमा। ऐसे ही प्रमाण कौन होगा, जो अज्ञात का ज्ञान कराएगा वही प्रमाण कहलाएगा। मतलब बिल्कुल प्रमाण कहलाने के लिए भी विषय की नवीनता जरूरी है और प्रमाण कहलाने के लिए भी विषय की नवीनता जरूरी है। ये हमने समझाने के लिए कहा। अब पंक्ति को देखिए, अनधिगत अर्थ गंत्री प्रमाणम। अनधिगत माने अज्ञात, जिसको नवीन भी कह सकते हैं। तो नवीन अर्थ का जो गंत्री है माने ज्ञान कराने वाला है वही प्रमाण कहलाता है। इति लक्षणम, ऐसा जो है लक्षण मीमांसकों ने और बौद्धों ने किया। इसका खंडन करते हैं कि तन्ना, कहा कि ये लक्षण सही नहीं है। क्यों नहीं है, तो एक ज्ञान होता है धारावाहिक ज्ञान। हम लोग टेलीविजन में धारावाहिक देखते हैं ना, वो धारावाहिक अलग चीज़ है, यहाँ का धारावाहिक अलग चीज़ है। एक ही टाइप का ज्ञान अगर बारम्बार होता है, जैसे ये घड़ा है यहाँ पर रखा हुआ, तो एक बार ज्ञान होगा घटोयम, फिर ज्ञान होगा घटोयम, फिर ज्ञान हो गया घटोयम, फिर ज्ञान हो गया घटोयम, माने जितनी बार देखेंगे घड़े को उतनी बार घटोयम 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 यह ज्ञान होगा। इस तरह से जो धारा में ज्ञान होने वाला है, माने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जो ज्ञान एक टाइप का ज्ञान है इसको धारावाहिक ज्ञान कहते हैं। और इस धारावाहिक ज्ञान को सब लोग मानते हैं और यह वास्तविक ज्ञान है। अब जब हम आँख से देखेंगे और कहेंगे कि घटोयम ये ज्ञान होगा, इसको कौन नकार सकता है। इसमें प्रमा भी है और प्रमाण भी है। प्रमा हो गया घटोयम घटोयम यह ज्ञान, और प्रमाण हो गया आँख, क्योंकि आँख के द्वारा उसको देखते हैं। तो जो ये मीमांसकों ने जो लक्षण दिया था, अनधिगत अर्थ गंत्री प्रमाणम, माने अर्थ भी अनधिगत होना चाहिए और गंत्री भी जो है ना अनधिगत होना चाहिए। अर्थ माने विषय, माने विषय भी नया होना चाहिए और विषय को ग्रहण कराने वाला भी नया होना चाहिए। ये अगर लक्षण मानेंगे प्रमाण का, तो फिर धारावाहिक ज्ञान जो है ना वह उसमें प्रामाण्य नहीं आ पाएगा, वो प्रमाण नहीं, उसमें प्रामाणिकता नहीं आ पाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें नवीनता नहीं है, वही ज्ञान बारंबार हो रहा है। पहले जो ज्ञान हुआ घटोयम, बाद में भी वही देखने पर घटोयम ज्ञान होता है, फिर देखते हैं तो घटोयम ज्ञान होता है। ये सारे ज्ञान प्रमा हैं और इसमें प्रमाण होता है चक्षुष, लेकिन यह जो धारावाहिक ज्ञान है या मीमांसकों के लक्षण से इसका प्रमाण नहीं कहला पाएगा। वही कहते हैं कि तन्ना, यह लक्षण उचित नहीं है, क्योंकि एकस्मिन्नेव घटे, एक ही घट में घटोयम घटोयम इति धारावाहिक ज्ञानानाम, घटोयम घटोयम या जो एक ही घट में धारावाहिक ज्ञान होता है, बार बार देखने से ज्ञान होता है, उसमें गृहित ग्राही नाम, इस तरह से गृहित ग्राही जो है माने जो गृहित माने ज्ञात और ग्राही मतलब ज्ञानी, तो जो ज्ञात का जो ज्ञानी है उसमें अप्रामाण्य प्रसंगात, उस ज्ञानी में अप्रामाणिकता का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि इसमें नवीनता रही नहीं, तो वह जो है ना अप्रमाण माना जाएगा, इसलिए ये लक्षण सही नहीं है। अब आगे कहते हैं कि न च अन्यान्यक्षण विशिष्ट विषयीकरणात् अनधिगत अर्थ गंथिता, कहा कि ये जो धारावाहिक ज्ञान में आपने दोष दिखाया कि धारावाहिक ज्ञान में क्या है ना कि ये होता है और नवीन नहीं होता है, लेकिन यह प्रमा भी है और इसमें प्रमाण भी है, तो यह दोष नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अभी हमने आँख खोल करके देखा तो ज्ञान हुआ घटोयम, तो घटोयम प्रमा है ज्ञान, और चक्षुष जो है ना वह हो गया प्रमाण, और फिर दूसरी बार देखा तीसरी बार देखा, इसमें जो है ना क्षण का अंतर है। प्रथम क्षण में हमने देखा तो ज्ञान हुआ घटोयम, द्वितीय क्षण में देखा तो ज्ञान हुआ घटोयम, तृतीय क्षण में देखा तो ज्ञान हुआ घटोयम, तो नवीनता तो आती ही गई ना, घट में नवीनता नहीं है लेकिन क्षण में तो नवीनता आ रही है ना, क्योंकि प्रथम क्षण की अपेक्षा द्वितीय क्षण नवीन है, द्वितीय क्षण के अपेक्षा तृतीय क्षण नवीन है, तृतीय क्षण के अपेक्षा चतुर्थ क्षण नवीन है, इस तरह से प्रमा में और प्रमाण में नवीनता आ ही जाती है। तो आपने जो ये कहा कि धारावाहिक ज्ञान में जो है ना अप्रामाण्य प्रसंग होगा, माने प्रामाणिकता का अभाव होगा, ऐसी बात नहीं है, मीमांसकों का लक्षण सही है। उनकी अनधिगत अर्थ गंत्री प्रमाणम, माने नवीन अर्थ का जो ग्रहण करावे वह प्रमाण कहलाता है, धारावाहिक ज्ञान में भी जो है नवीन अर्थ का ग्रहण चक्षुष कराता है, इसलिए चक्षुष को प्रमाण माना जाएगा। नवीनता किस में है? घट में नहीं है लेकिन क्षण में है। यही बात यहाँ पंक्ति में देखिए, नाचा अन्य अन्य क्षण विशिष्ट विषयीकरणात्, माने अलग अलग क्षण में विषय को जो है ना हम देखते हैं, घट घरे विषय क्या है यहाँ पर, घरा आदि है, तो अन्य अन्य क्षण विशिष्ट जो विषय है उस विषय का ज्ञान करते हैं, इसलिए अनधिगत अर्थ गंत्री गंत्रित्व जो है इसमें रहता ही है धारावाहिक ज्ञान में। प्रत्यक्ष न सूक्ष्म काल भेद अनाकलनात्, तो कहा कि जो है ना अगर ऐसा है वह नवीन नवीन क्षण होता है तो फिर ये मालूम भी चलना चाहिए ना कि इसमें नवीनता है, लेकिन वो नवीनता का पता कहाँ चलता है? एक बार देखने में जो घटोयम जिस तरह से होता दिखता है ज्ञान होता है, दूसरी बार देखने में भी वैसा ही ज्ञान होता है, तीसरी बार में भी वैसा ही ज्ञान होता है, तो कहते हैं कि ऐसा है कि प्रत्यक्ष न सूक्ष्म काल भेद अनाकलनात्, जब हम घट का प्रत्यक्ष करते हैं बार बार तो उसमें इतना सूक्ष्म काल होता है कि उसका आकलन नहीं हम कर पाते हैं, वो हमें पता नहीं लग पाता है कि ये नवीन क्षण है, लेकिन क्षण में नवीनता तो होती है, ज्ञान में नवीनता तो होती है। मतलब ये हुआ कि घट में भले नवीनता न हो लेकिन क्षण विशिष्ट जो घट है, अन्य अन्य क्षण विशिष्ट जो घट है, उस घट का जो ज्ञान है वह नवीन होता है, और उस ज्ञान का ज्ञान कराने वाला जो इंद्रिय है वह प्रमाण है, यह बात यहाँ पर बैठ जाती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये लक्षण सही नहीं है। पंक्ति को फिर से पढ़ते हैं, न च अन्य अन्य क्षण विशिष्ट विषयी करनात्, माने भिन्न भिन्न क्षण से विशिष्ट जो घट आदि विषय है उसका विषयीकरण करने से, माने ज्ञान करने से अनधिगत अर्थ गंत्रिता हो जाती है, इसलिए उसमें प्रमाणता आ जाएगी। प्रत्यक्ष न सूक्ष्म काल भेद अनाकलनात्, प्रत्यक्ष के द्वारा जो है सूक्ष्म काल में इतनी सूक्ष्मता रहती है उसमें भेद का आकलन नहीं हो पाता, आकलन माने ज्ञान, भेद का ज्ञान नहीं हो पाता। काल भेद ग्रहे ही क्रिया संयोगा क्रियादि संयोगांतानाम चतुर्णाम योग पद्याभिमानो न स्यात्, कहा कि उसमें अगर काल भेद का ग्रह करेंगे, एक बात आप जान लीजिए कि शास्त्र में जहाँ भी ग्रह धातु का प्रयोग हो ना उसका अर्थ ज्ञान होता है, जैसे यहाँ है ना काल भेद ग्रहे, तो ग्रहे माने ज्ञाने, माने काल भेद ज्ञाने, काल के भेद के ज्ञान में, तो काल भेद ग्रहे ही। अब होता क्या है कि मान लीजिए गेंद है, तो गेंद को जो है ना हमने पाँव से मारा, तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो गेंद में जो है ना क्रिया होगी, और फिर क्रिया से जो है ना उसमें विभाग होगा, माने पाँव से गेंद जो है अलग चली जाएगी, फिर विभाग होने के बाद क्या होगा, पूर्व संयोग नाश होगा, माने पाँव से जो संयुक्त था गेंद उस संयोग का नाश होगा, फिर उत्तर देश संयोग होगा, माने वह गेंद जहाँ जाकर के जाएगी उस देश के साथ उसका संयोग होगा। तो ये चार चीजें होती हैं, क्रिया, क्रिया से विभाग, और विभाग से पूर्व संयोग का नाश, और पूर्व संयोग नाश के बाद उत्तर संयोग की उत्पत्ति। अब जैसे मान लीजिए हम अपने घर से विद्यालय जाते हैं, तो हम पहले हम में क्रिया उत्पन्न होती है, माने हम चलना क्रिया शुरू करते हैं, फिर चलना क्रिया करने के कारण क्या होता है, विभाग होता है, माने हम अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने से क्या होता है, पूर्व संयोग नाश होता है, माने घर से हमारा जो है ना विभाग हो गया, तो घर से जो हमारा संयोग था उस संयोग का नाश हो गया, और जब हम विद्यालय पहुंच गए तो उत्तर संयोग की उत्पत्ति हो गई, माने विद्यालय के साथ हमारा जो है संयोग हो गया। तो यहाँ पर ये जो चार चीजें हैं कि पूर्व संयोग का नाश होता है, उत्तर संयोग की उत्पत्ति होती है, इसमें परस्पर कार्य कारण भाव है। पहले क्रिया होगी तो क्रिया का विभाग होगा, क्रिया का विभाग होगा तो फिर विभाग से पूर्व संयोग का नाश होगा, और पूर्व संयोग का नाश जब होगा तब उत्तर संयोग की उत्पत्ति होगी। इस तरह से ये जो चार चीजें होती हैं, क्रिया, क्रिया तो विभाग, विभागात पूर्व संयोग नाश, और ततः उत्तर संयोग उत्पत्ति, ये जो चार चीजें हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, घटोयम घटोयम वाला जो धारावाहिक ज्ञान है ना, वहाँ पर आ जाइए कि एक बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, तो यहाँ पर भी पहली बार आप जब आपने जब घड़ा को देखा तो क्रिया हुई, फिर क्रिया से जो है ना विभाग हुआ, फिर विभाग से पूर्व संयोग का नाश हुआ, फिर उत्तर संयोग की उत्पत्ति हुई। इस तरह से अब पंक्ति में चलते हैं, काल भेदक ग्रहेति, ग्रहेतु माने प्रत्यक्ष के द्वारा अगर सूक्ष्म काल का भी भेद का आकलन हो जाए, सूक्ष्म काल के भेद को भी का भी अगर ज्ञान हो जाए, तो फिर जो है ना क्रियादि संयोगांता नाम, क्रिया से लेकर के और संयोगांत तक माने उत्तर संयोग की उत्पत्ति तक जो चतुर नाम, जो चार चीजें हैं, उसमें योग पद्य का अभिमान नहीं हो पाएगा। योग पद्य कहते हैं एक काल में उत्पन्न होना, तो ये होता तो है भिन्न भिन्न काल में, भिन्न काल में क्रिया होती है, भिन्न काल में क्रिया से विभाग होता है, भिन्न काल में विभाग से पूर्व संयोग का नाश होता है, और भिन्न काल में उत्तर संयोग की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये इतनी जल्दी जल्दी होती है कि हमें इसका आकलन नहीं हो पाता है, हमें इसका ज्ञान नहीं हो पाता है, हमें लगता है कि ये योग पद्य है, माने एक साथ ही ये चारों चीजें हो गई, क्रिया भी हो गई, क्रिया से विभाग भी हो गया, विभाग के कारण पूर्व संयोग का नाश भी हो गया, और पूर्व संयोग के नाश होने से उत्तर संयोग की उत्पत्ति भी हो गई। तो इस तरह से आपने जो ये कहा था कि धारावाहिक ज्ञान में दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें घट में भले ही नवीनता नहीं है, लेकिन क्षण में तो नवीनता होती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष के द्वारा उस नवीनता का ज्ञान संभव नहीं है। अगर हम प्रत्यक्ष के द्वारा नवीन नवीन क्षण को मानेंगे और उसका ज्ञान मानेंगे, तो ये जो योग पद्य का अभिमान होता, अभिमान माने समझ, ज्ञान, तो योग पद्य का जो अभिमान होता है वह नहीं हो पाएगा। जबकि इसको सब लोग मानते हैं कि ये भिन्न भिन्न काल में होते हैं, लेकिन इसमें योग पद्य का अभिमान होता है, क्रिया क्रिया विभाग वाले में, कि ये एक साथ ही हुआ है, ये चीजें जो है ना नहीं हो पाएंगी, इसलिए धारावाहिक ज्ञान में जो है ना यह दोष होगा। इसीलिए अनधिगत अर्थ गंत्री प्रमाणम, ये वाला जो मीमांसकों का लक्षण है वह सही नहीं है। अब क्योंकि अगर मान लीजिए क्षण में नवीनता मानते भी हैं ना, तो लेकिन उसका प्रत्यक्ष से वो ज्ञान में नहीं आ पाता है, तो जब प्रत्यक्ष से उसका ज्ञान नहीं हो पाता है तो उसको हम नवीन नहीं कह सकते। अब यहाँ जो है कहते हैं कि ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति, ताकि प्रमा के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे प्रमात्री, प्रमेय आदिनी। प्रमात्री कहते हैं जो प्रमाणित करने वाला व्यक्ति है वह हो गया प्रमाता, अप्रमेय जिसको प्रमाणित किया जाता है वह हो गया प्रमेय, और आदि से हम इंद्रिय का संयोग ले लेंगे। इस तरह से प्रमात्री, प्रमेय, इंद्रिय संयोग आदि बहुत सारे जो है प्रमा के कारण होते हैं। तो तानी अपि किम करनानी उत न, ताकि ये सारे इतने जो कारण होते हैं प्रमा के, वो सारे करण कहलाएंगे क्या, अथवा करण नहीं कहलाएंगे। तानी अपि किम कारणानि उत न इति। उत माने अथवा, माने ये जो बहुत सारे कारण हैं प्रमा के, ये करण कहलाएंगे या करण नहीं कहलाएंगे, ऐसा प्रश्न किया। फिर इसका समाधान देते हैं उच्यते कह करके कि सत्यपि प्रमातरी प्रमेय च प्रमा अनुत्पत्ते है। कहा कि करण कहलाने के लिए ये शर्त है कि जिसके तुरंत बाद जो है कार्य की उत्पत्ति हो जाए वह करण होता है, लेकिन प्रमा प्रमेय आदि में ये बात नहीं है। सत्यपि प्रमातरी प्रमेय माने प्रमाता के रहने पर भी, प्रमेय के रहने पर भी प्रमा अनुत्पत्ते है, प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती है। इंद्रिय संयोग आदो सती अविलंबे न प्रमा उत्पत्ते, जब इंद्रिय का संयोग होगा, मान लीजिए आंख भी है और घड़ा भी है, तो प्रमाता है आंख और प्रमेय है घड़ा, लेकिन उस जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। जब इंद्रिय संयोग होगा घड़ा से तभी जा करके अविलंबे न प्रमा की उत्पत्ति होगी, माने यथार्थ ज्ञान होगा। तो इस तरह से जिसके तुरंत बाद अविलंब से प्रमा की उत्पत्ति हो न, वही करण कहलाएगा। इसलिए इंद्रिय संयोग आदि एव करणम, इंद्रिय संयोग आदि जो है वही करण कहलाता है, प्रमाता और प्रमेय आदि जो है वह करण नहीं कहलाएगा, क्योंकि अविलंबेन प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रमाता और प्रमेय के रहने पर भी जब तक इंद्रिय संयोग नहीं होगा तब तक प्रमा की उत्पत्ति नहीं होगी, घट का ज्ञान नहीं हो पाएगा। प्रमायाः साधकत्व अविशेषेपि, यद्यपि ये प्रमाता प्रमेय इंद्रिय संयोग सब में प्रमा का साधकत्व है, साधकत्व माने कारणत्व, सब में कारणत्व है, किंतु अनेनेव उत्कर्षेन, किंतु ये इंद्रिय संयोग है ना, इसमें उत्कर्ष है, इसमें प्रकृष्टता है, और इसी के कारण प्रमात्रादिभ्य अतिशयितत्वात् प्रमातृ प्रमेय आदि की अपेक्षा ये जो इंद्रिय संयोग है ये अतिशयित है, माने साधकतम है। इसलिए अतिशयितम साधकम साधकतम या अतिशयित साधक होने के कारण, साधकतम होने के कारण तदेव करणम, इंद्रिय संयोग ही जो है प्रमा के प्रत्यक्ष प्रमा के प्रतिकरण है, अतः इंद्रिय संयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात् प्रमाणम न प्रमात्रादि। इसीलिए इंद्रिय संयोगादि ही जो है न प्रमा का करण कहलाएगा, प्रमाण कहलाएगा, प्रमाता प्रमेय आदि जो है प्रमा का करण नहीं कहलाएगा, मतलब प्रमाण नहीं कहलाएगा। इस तरह से यहाँ पर तक प्रमाण किसको कहते हैं, वो क्या है, उसके बारे में सब बताया। अब इसके बाद प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, क्या होते हैं, उसको जो है ना बताया जाएगा। तो आज का पाठ यहीं पर सुरक्षित रखते हैं, आगे का आगे पढ़ेंगे।